नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स कैन की एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार।
सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में सुरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से हराया। इस जीत के साथ सुरमा 9 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। पुरुष वर्ग में राउरकेला में सुरमा हॉकी क्लब का सामना सांचीराण बंगाल टाइगर से हो रहा है। खो खो विश्व कप के सफल आयोजन के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान बनाए गए। और इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 टूर्नामेंट कल से शुरू, भारतीय बैडमिंटन टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। और खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हॉकी इंडिया लीग की, जिसके महिला वर्ग में रांची में सुरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से हरा दिया है। सुरमा क्लब ने 4 मैच में से 3 मैच जीते हैं, वहीं दिल्ली ने 4 में से सिर्फ 1 मैच में ही जीत हासिल की है। आज करो या मरो का दिन था दिल्ली के लिए, और जिस तरीके से आज ये पूरा मैच खेला गया, पहले क्वार्टर में 1 गोल, दूसरे में 1 गोल, फिर तीसरा में कोई गोल नहीं हुआ, और फिर चौथे क्वार्टर में जिस तरीके से 3 गोल हुए, तो 5 गोल के साथ सुरमा हॉकी क्लब ने, जिसे कहते हैं कि अपना जो बड़ी जीत है वो पक्की की। रणवीर,
बिल्कुल जिस तरह से आप बताते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप मैच के बीच में पहुंच गए मैदान में। और हॉकी के लिए बड़ी जीत है कि एक एक क्वार्टर में 1-1 गोल हुआ, थर्ड में नहीं हुआ तो फोर्थ क्वार्टर में जाके उन्होंने पूरा लपेटा कर दिया और 5-0 से इस मैच को जीता। बहुत शानदार जीत है सुरमा क्लब के लिए।
बिल्कुल, हालांकि 1 गोल जो है वो दिल्ली एसजी पाइपर्स ने किया, पर जिस तरीके का पूरे खेल के दौरान रणवीर जो दबदबा बनाए रखा सुरमा हॉकी क्लब ने, और जिसकी वजह से अब फिलहाल जो सुरमा है उनके हौसले बुलंद हैं, 9 अंक ले चुके हैं, 3 जीत है, 4 मैच खेले हैं और 1 मैच फिलहाल वो हार गए थे, बट टोटल जो परफॉर्मेंस है सुरमा की वो काफी बेहतरीन है।
जिस तरह से उन्होंने आज मैच में जो 5-1 की लीड के साथ मैच फिनिश किया, वो ये दर्शाता है कि मैच के दौरान मैक्सिमम टाइम जो है सुरमा क्लब चढ़ के खेल रहा था और ओपोनेंट के हाफ में ही सारा खेल चलता रहा।
जी, और कल जो है सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच में रांची में कल शाम को 6 बजे मुकाबला होगा और काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और इस बीच पुरुष वर्ग में राउरकेला में सुरमा हॉकी क्लब का सामना सांचीराण बंगाल टाइगर्स से हो रहा है। फिलहाल जो ताजा अपडेट था, दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी, पर जिस तरह से ये पूरा मैच प्रसार भारती की ओर से दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है, इसके अपडेट्स हम अपने समाचारों में और स्पोर्ट्स कैन के श्रोताओं को दे रहे हैं। रणवीर,
बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, और आकाशवाणी और दूरदर्शन जो ब्रॉडकास्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो ये काम उन्होंने अपने हाथों में लिया, ये एक अच्छी बात है। जितना ज्यादा देश भर में ये टीवी पे देखा जाएगा, रेडियो पे सुना जाएगा, उतना ही और ज्यादा बच्चे इसकी ओर आकर्षित होंगे कि हॉकी खेली जाए।
भारत ने कल रात पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। टीम के जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारतीय टीम को पहला खो खो विश्व कप जीतने पर बधाई। ये ऐतिहासिक जीत टीम के अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल। सुधांशु जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के तमाम श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर।
आप सबका बहुत आभार, भारत के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि हमारी महिलाओं की और पुरुषों की टीम दोनों ने खो खो के प्रथम खो खो विश्व कप में सफलता हासिल करी और भारत का मान बढ़ाया है।
सुधांशु जी, खो खो विश्व कप के सफल आयोजन के बाद आप भारत के इस पारंपरिक खेल का क्या भविष्य देखते हैं?
ये खेल जो है बड़ा मास्ट स्पोर्ट है, इसमें पैसे नहीं लगते, इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौकी दानी गांव कहीं चले जाइए वो खेला जाता है। और इस खेल के प्रति लोगों में बड़ा उत्साह है। अब जब हम इसको विश्व के 55 देशों में लेके गए तो वहां पे जिसके सामने भी ये खेल को हमने इंट्रोड्यूस करा वहां पे इसकी फौरन स्वीकार्यता, तो ये सब देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2030 में हम लोग इसको एशियन गेम में ले आएंगे और 2032 तक इसको ओलंपिक तक भी ले जाएंगे।
जी बहुत बड़ा सपना है ये, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो भारत के पारंपरिक खेल हैं उनको हमें बढ़ावा देना है, तो आपको और फेडरेशन को खिलाड़ियों को किस तरीके का सपोर्ट मिला सरकार से?
देखिए ये जो आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनाया
जी,
यही हमारे लिए एक फेडरेशन रहा था। हमें भी लगा कि क्यों नहीं हम अपने खेल को बाहर के देशों में लेके जाए, बाहर के देशों के खेल तुम खेलते ही, हमारा खेल क्यों नहीं बाहर जा सकता है? और उसी भावना से ये सारी चीज का आयोजन हुआ। और आपने देखा कि 23 देश ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उसमें 22 देश जो हैं वहाँ से आए थे।
जी
अपने आप में एक बड़ा अद्वितीय कार्य हुआ है, और इसके इसके जो परिणाम है उन परिणामों को देखते हुए अब ये मुझे इसमें संशय नहीं है कि इस साल के आखिरी तक
जी
हम खो खो को 90 देशों तक ले जाएंगे।
जी बिल्कुल, ये आपकी और फेडरेशन की मेहनत का नतीजा है कि किस तरीके से खो खो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। और जैसा कि कल जैसे हमने ऐतिहासिक सफलता हासिल की, बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर लिखा कि हमारे खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी, और आदित्य कौशल दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का उन्होंने जो परिणाम बताया इसको, तो वो एक बड़ी बात थी। आप क्या कहेंगे?
देखिए खेल जो है, खेल में सिर्फ स्पीड है, स्टेमिना है, एजिलिटी है, रिफ्लेक्शन है, स्ट्रेटेजी है, और ये सारी चीजें जो है क्योंकि ये टीम खेल है, तो जब तक एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं होंगी
जी,
तब तक अकेला आदमी कितना भी होशियार हो, परिपक्व हो, उसका परिणाम जो है तब तक अच्छे नहीं निकलते हैं।
जी
भारत की टीम जो है बहुत लंबे अरसे तक अभ्यास करती है, और पिछले डेढ़ महीने का तो कैंप ही रहा है।
जी जी,
और उस कैंप साथ रहते रहते सब में आपस में प्यार भाव इतना है और एक दूसरे की समझ इतनी है
जी,
कि इसी वजह से वो इस खेल को उस ऊंचाई तक ले जा सके।
जी सुधांशु जी, जो स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम है, इसके श्रोता ना सिर्फ हमारे मेट्रोज में हैं बल्कि देश के दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ भी न्यूज ऑन AIR से वो हमें सुनते हैं, तो जो बडिंग प्लेयर्स खो खो में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है?
मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई जमाना था कि खेलने के बाद खो खो में आपको भविष्य नहीं दिखता था।
जी
अब 3,000 बच्चों को नौकरी लग चुकी है, ये जो विश्व विजेता बने इनको पुरस्कार मिले जाएंगे
जी,
अर्जुन अवार्ड से पहले ही नवाजा जा चुका है
जी,
तो अब जो खो खो का खिलाड़ी है उसका भविष्य जो है उज्ज्वल है, वो टेलीविजन पे दिखता है, वो विश्व पटल पे दिखता है
जी,
वो हर जगह दिखता है, और अब खेल में नौकरी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, इसलिए खेल को जो है आकर्षण से देखिए, ये भविष्य का खेल है।
तो सुधांशु जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत आभार आपका, और मैं श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके दिल का खेल है, आपकी धड़कनों का खेल है, आपके ख्वाबों का खेल है, आपके जज्बातों का खेल है, इससे जुड़िए, ये आपका खेल है, ये भारत का खेल है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये थे सुधांशु मित्तल, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, और जिनसे अभी हमने बात की। और रणवीर, जिस तरह से इस पूरे खो खो विश्व कप का भारत में पहली बार जो इनॉग्रल एडिशन था उसका उद्घाटन सत्र जो है वो सफल आयोजन किया हुआ भारत में, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए सुधांशु जी ने जैसा बताया कि दिन रात मेहनत की, इनके साथ इनकी टीम में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है MS त्यागी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं खो खो फेडरेशन के, बहुत मेहनत की इन दोनों लोगों ने और इनकी टीम ने। अब मैं आऊं इस मुद्दे पे कि खो खो से क्या मिला। कल पुरुष टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी, आज सुबह पुरुष टीम के जो कप्तान है प्रतीक वाइकर महाराष्ट्र से हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वहां 12 साल से नौकरी कर रहे थे, वर्ल्ड चैंपियन बनते ही आज सुबह उनके डायरेक्टर, स्टेट में एक ही डायरेक्टर है, मैंने पूछा उनसे, उनका फोन आया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको क्लास 1 नौकरी, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उप जिलाधीश का पद ऑफर कर दिया, अब आप ये बताओ कब आओगे मुंबई, हम आपका स्वागत भी करेंगे, आपको ऑफर। एक आदमी जो क्लरिकल से सीधा SDM बनेगा, आप समझिए उसके घर में किस तरह की खुशी होगी।
बिल्कुल,
इसको देख के लोग और खो खो की तरफ बढ़ेंगे, एक तो बात ये। दूसरा, खो खो का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं ग्रेजुएशन में, उसमें स्पोर्ट्स कोटे में 140 सीटें हैं खो खो प्लेयर्स के लिए
जी,
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात तो है, अगर एक यूनिवर्सिटी में 140 सीटें
जी। तो रणवीर, आप बता रहे हैं कि खो खो का भारत में, न सिर्फ भारत में हम कहें पूरी दुनिया में एक उज्जवल भविष्य है। और जो हमने बडिंग प्लेयर्स की बात की थी, स्पेशली वो लोग जो रूरल एरियाज में हैं जहां पे उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब वो सारी फैसिलिटीज उनको मिलने वाली हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी कल से शुरू हो रहे इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में साल का अपना पहला खिताब जीतने के उद्देश्य से कोर्ट पर उतरेगी, जबकि लक्ष्य सेन सत्र की निराशाजनक शुरुआत को पीछे छोड़कर वापसी करना चाहेंगे। सात्विक और चिराग की दुनिया की 9वें नंबर की जोड़ी शानदार फॉर्म में है। स्टार जोड़ी पिछले दो टूर्नामेंट मलेशिया ओपन सुपर 1000 और इंडिया ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल में पहुंची थी और अब मौका है आगे इस जोड़ी को बढ़ने का।
इस जोड़ी को बढ़ने का भी मौका है। और दूसरा, लक्ष्य सेन का जो प्रदर्शन दिल्ली में थोड़ा सा खराब रहा, खिलाड़ी का दिन होता है, लेकिन लक्ष्य सेन जिस तरह से पिछले 2-3 साल से इंटरनेशनल सीन पे छाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें वो बहुत अच्छा करके दिखाएंगे।
बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान बनाए गए हैं, वे केएल राहुल की जगह लेंगे। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के भी कप्तान रह चुके हैं, सुनते ही रिपोर्ट।
मेगा ऑक्शन के बाद से ऋषभ पंत को लखनऊ का कप्तान बनाने की बातें हो रही थी। फ्रेंचाइजी ने नवंबर 2024 के मेगा ऑक्शन में पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसी के साथ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। पंत के लिए आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स दूसरी टीम है। इससे पहले उन्होंने आईपीएल में अपने करियर की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स से 2016 में की थी। उस समय डेयरडेविल्स ने उन्हें 2016 के ऑक्शन में 1.6 करोड़ में खरीदा था। पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी रहे हैं। वे 2021 में कैप्टन बनाए गए। 2022 में चोट की वजह से वह आईपीएल से दूर रहे। 2023 में भी वह दिल्ली के कप्तान रहे। इससे पहले केएल राहुल ने 3 सीजन 2022, 23 और 24 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का नेतृत्व किया था। टीम ने पहले 2 साल प्लेऑफ में जगह बनाई, हालांकि फाइनल का सफर तय नहीं कर पाई। वहीं 2024 का सीजन काफी खराब रहा, टीम 7वें स्थान पर रही। उम्मीद है कि ऋषभ पंत एक बार फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अपना दमखम दिखाएंगे। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने के लिए ऋषभ पंत तैयार हैं। रणवीर,
ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले, उसके बाद जिस तरह से उस खिलाड़ी ने रिकवरी की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने फ्रैक्चर हुए थे, कितने उनके नी में स्क्रू पड़े हुए हैं, उसके बावजूद विकेट कीपिंग करना, बैटिंग तो कर लेंगे, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच बुधवार को कोलकाता में खेला जाएगा। टीम इंडिया फिलहाल पूरी मुस्तैदी से कोलकाता के ईडन गार्डन में प्रैक्टिस कर रही है। इस बीच टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल ने मीडिया से बातचीत में टीम की तैयारी के बारे में बताया।
इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला से पहले भारत के उपकप्तान अक्षर पटेल ने आज कहा कि भारतीय T20 टीम में सिर्फ सलामी बल्लेबाजों का क्रम ही तय है, जबकि बाकी सभी बल्लेबाजों को क्रम को लेकर लचीला रुख अपनाना होगा। भारतीय टीम बुधवार को ईडन गार्डन्स पर पहला मैच खेलेगी। बल्लेबाजी क्रम में बार बार बदलाव के बारे में पूछने पर अक्षर ने कहा, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है बल्कि टीम में सभी पर लागू होता है। उन्होंने कहा, 2024 की शुरुआत से हमने तय किया था कि सलामी जोड़ी तय होगी, जबकि 3rd से 7th नंबर तक सभी को हालात, संयोजन और मैचअप्स के अनुरूप लचीला रहने के लिए कहा गया है।
जी हाँ, तो फिलहाल जो टीम इंडिया की तैयारी है, रणवीर, बहुत संक्षिप्त में क्या कहेंगे आप?
शानदार फॉर्म में है टीम और जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी टीम
जी,
तो उसी इरादे के साथ कल ईडन गार्डन्स पे भी मैच देखने को मिलेगा।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
सिद्धार्थ, आपको भी मेरा आभार।
श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार, शुभरात्रि।